सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवममपत्थसौखमणवज्रं केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। ये षटखंडागम शास्त्र पर की ये धवला टीका है जिसको वीरसेन आचार्य ने लिखा था और जो मूल शास्त्र है पुष्पदंत और भूतबली आचार्यों ने षटखंडागम की रचना की थी दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार। अब हम यहाँ शास्त्र की शुरू में ही मंगल आदि करने का जो प्रघात है जो रूढ़ी है यानी ऐसे पद्धति है तो छह बातें शास्त्र के शुरू में की जाती हैं। पहले मंगल किया जाता है, ग्रंथ का निमित्त, ग्रंथ का हेतु, ग्रंथ का प्रमाण, ग्रंथ का नाम और ग्रंथ का कर्ता बताया जाता है। ये जो छह बातें बताई उसका भी छह छह अपेक्षाओं से वर्णन आता है। तो उसमें पहले उसका धातु बताया जाता है, उसके पश्चात निक्षेप नय, उसके एकार्थवाची शब्द, उसकी निरुक्ति यानी वो शब्द कैसा तैयार हुआ और उसके पश्चात अनुयोग। इसमें से हमने धातु मंगल शब्द संबंधी बात चल रही है, मिग धातु है। निक्षेपों में हमने छह प्रकार के निक्षेप देखे थे, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र कालभा यानी नाम मंगल द्रव्य मंगल ऐसे सब लगा लेना उसमें, तो निक्षेप की बात हुई। नय की भी बात हमने चर्चा विस्तार से थोड़ी बहुत की थी। एकार्थवाची शब्द भी हमने कल देखे, शिव कल्याण आदि जो अन्य अन्य शब्द उसके मंगल के लिए आते हैं उसकी बात भी हमने की थी। अब निरुक्ति में से आधा हमारा हुआ था कि जो पाप को यानी मल को गलावे उसको मंगल कहते हैं यानी मलम गालयति, तो उसका दूसरा जो हाफ है उसकी बात हम आज करेंगे। हम यहाँ पेज नंबर 34 पर आए थे, कल जो बात देखी थी उसको फिर जरा दोहराते हैं। यानी मंगल की निरुक्ति जो बताई थी उसको फिर दोबारा हम पढ़ेंगे 33 पेज पर से। निरुक्ति यानी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ यानी वो जिस प्रकार से वो शब्द की उत्पत्ति हुई उसके अनुसार उसका अर्थ लगाएंगे। जो मल का गालन करे विनाश करे, ऊपर आए संस्कृत में मलम गालयति तो मंगल ऐसा उसका शब्द तैयार हुआ। विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। अब हमने वो कौन से मल का नाश करते हैं तो उसमें हमने दो बातें देखी, द्रव्य मल और भाव मल। द्रव्य मल में भी यानी पौद्गलिक मल, तो उसमें शरीर के ऊपर जो मल चोटता है, पसीना है, धूल है आदि, उसको बाह्य लिया और उसके अगेंस्ट कर्मों को अभ्यंतर में लिया। देखो द्रव्य मल दो प्रकार का है, यानी मल दो प्रकार का, द्रव्य मल और भाव मल। द्रव्य मल भी दो प्रकार का, बाह्य द्रव्य मल और अभ्यंतर द्रव्य मल। बाह्य में पसीना, धूल, मल आदि, और अभ्यंतर में आठ प्रकार के जो कर्म है, ज्ञान आवरण आदि आठ कर्म, जड़ कर्म जिसको कहते हैं, उसको अभ्यंतर द्रव्यमल कहा है। उसके लिए दो शब्द आए यहाँ, सांद्र यानी थिक घन स्वरूप और कठिन रूप से, यानी वो जीव के प्रदेशों से जुड़ते हैं तो जब भी उसकी स्थिति पूरी होकर गल जाएगी तभी वो निकल जाएंगे, तब तक वो जीव के प्रदेशों के साथ बंधे हुए रहेंगे एक क्षेत्रावगाह रूप से और फिर अपना फल देकर निकल जाएंगे। तो उसको कहते हैं कि सांद्र और कठिन रूप से बंधे है। तो बंध कितने प्रकार से बंधा है वो, तो हमने देखा प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इन चार प्रकारों से बंधे हुए ये ज्ञानावरणादि जो आठ कर्म है उसको अभ्यंतर द्रव्यमल कहा। सांद्र यानी घन सर, थिक, हाँ उसी को सांद्र कहा। यानी कैसे बंधे हैं, बिल्कुल सांद्र तरीके से बंधे हैं। गाढ़ा यानी हाँ बिल्कुल उसके घन स्वरूप है एकदम, जिसको कहते हैं थिक है। ये तो द्रव्यमल की बात हुई, और भावमल किसको कहना, तो अज्ञान अदर्शन आदि आदि में जो जीव के जो कुछ विभाव वगैरह परिणाम है उसको भावमल कहना है। अब दूसरे पद्धति से इसी मल का क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले तो हो गए द्रव्यमल भावमल, ये बात कर दी। अब हम अलग तरीके से उसको, अगर मल को हमको वर्गीकरण उसका करना है तो कैसे कहेंगे, तो अर्थमल, शब्दमल और ज्ञानमल। तो उसके लिए यहाँ शब्द कौन से, देखो सेकंड पैराग्राफ, अथवा अर्थ अभिधान यानी शब्द और प्रत्यय यानी ज्ञान के भेद से मल तीन प्रकार का है। हमने कल इसका उदाहरण दिया था, देखो ये नए भी तीन ऐसे होते हैं, अर्थ नए, शब्द नए और ज्ञान नए। जो पदार्थ है वो पदार्थ को जानना, जैसे हम शक्कर को जान रहे तो उसमें वहां कोई शब्द उच्चारने की जरूरत नहीं है, हमें तो भाषा आती है। अभी कोई असंगी है या मक्खी है उसको भी वो शक्कर दिखती भी है और उसको उसका टेस्ट भी आता है, तो क्या वो शक्कर को जानती है कि नहीं जानती? जानती है, मगर उसने वो शक्कर ऐसा शब्द को नहीं जानती है। यानी उस पदार्थ को कुछ नाम दे तो ही वो पदार्थ जानने में आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये अर्थ ने क्या करता है, पदार्थ को जानता है। शब्द ने उस पदार्थ को जो हमने नाम दिया है उस नाम को जानता है, और ज्ञान ने वो उस पदार्थ को भी जानता है और उस शब्द को भी जानता है, और इस पदार्थ को ये नाम दिया ऐसा भी जानता है ना, ये ज्ञान ने। तो यहाँ ऐसे मल है वो तीन प्रकार के कहे, कौन से, अर्थ अभिधान और प्रत्यय यानी ज्ञान। कि मल तीन प्रकार का है, यानी प्रत्यय मल या ज्ञान मल कहेंगे वो ज्ञान का मल, ज्ञान रूपी मल ऐसा नहीं लगाना उसमें, मल संबंधी ज्ञान ऐसा लेना। अर्थमल तो अभी पहले कहे आए हैं, अर्थमल यानी एक्चुअल मल। तो एक्चुअल मल हमने अभी अभी देखा था कि बाह्य और अभ्यंतर के भेद से द्रव्यमल है दो प्रकार का, और भावमल है जो जीव के परिणाम है अज्ञान अदर्शन आदि। ये सभी क्या हो गए, अर्थमल। द्रव्यमल और भावमल दोनों अर्थमल के भेद होंगे, ख्याल आता है कि नहीं? देखो अर्थमल किसको कहना, एक्चुअल जो मल है उसको हम अर्थमल कहेंगे। तो एक्चुअल मल कितने प्रकार का हमने देखा था, दो प्रकार का, द्रव्यमल और भावमल। द्रव्यमल भी वो अभ्यंतर और बाह्य। तो यानी ये जो मल के जो अभी हमने ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया वो सभी क्या है, अर्थमल। यानी वो पदार्थ है, मल इटसेल्फ है, वो मल है ना वो, तो वो दोनों ही प्रकार अर्थमल में गर्भित है। अर्थात जो पहले बाह्य द्रव्यमल, अभ्यंतर द्रव्यमल और भावमल कहा गया है उसे ही अर्थमल समझना चाहिए, यानी एक्चुअल मल हम इंग्लिश में बताएं तो। हाँ नहीं, अभ्यंतर कर्मों को कहा, जड़ कर्मों को अभ्यंतर द्रव्यमल कहा है ना। द्रव्यमल में दो, शरीर के बाहर से चोटे हुए जो पसीना है, कोई दाग लगा है, जो कुछ भी है वो तो बाह्य द्रव्यमल हुआ। अभ्यंतर द्रव्यमल यानी जड़ कर्म, आठ कर्म, यानी कर्म कैसे बंधा हुआ है, कठिन रूप से वो बंधा हुआ है। यानी जीव के प्रदेश हम कहते ना, उसका कैसा संबंध हो गया, संश्लेष संबंध हुआ, यानी जीव के प्रदेशों से हुआ, ऐसा ही बाय चांस विभक्त हो जाए, निकल जाए, टूट जाए, जैसे हम कोई पेपर है तो फाड़ देते, वो निकल जाता है कहीं, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, ऐसे बाय चांस कट हो जाएगा स्कंद, उंगली कट गई तो यहाँ के प्रदेश भी प्रदेश प्रदेश निकल जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, तो प्रदेश तो वहीं पर है। तो उसमें जो कर्म के जो फैले हुए थे वो सब ज्ञानावरण, वो भी वो जीव के प्रदेशों में रहते हैं। ऐसे कोई कर्म कट जाए ऐसी बात नहीं होती है, तो वो जीव के प्रदेशों से बंधे हुए हैं। उसका विशेषण है कैसे बंधे हुए हैं उसकी बात बताई। तो ये अर्थमल समझ में आया? हाँ, यानी जिसको हमने द्रव्य भाव ऐसे विभाजन किया था वो सभी क्या है? अर्थमल है। अब मल के वाचक शब्दों को अभिधान मल कहते हैं, यानी मल कहो, गंदगी कहो, ऐसे जो कोई भी चीज हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे उसको क्या कहेंगे? शब्द, यानी मल को बताने वाला शब्द, वो क्या हुआ? शब्द मल। तथा अर्थमल और अभिधान मल में उत्पन्न हुई बुद्धि को प्रत्ययमल कहते हैं, यानी उस अर्थमल को जो जानने वाला है और उसका वाचक जो शब्द है उसको भी जो जानता है। जैसे हमने मल कहा और अंग्रेजी में हमने उसको डर्ट कहा या गंदगी कहा, जो कुछ हमको उसका नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो उसको मल को भी जाना जीव ने, समझो यहाँ दाग पड़ा था, धूल लगी थी, उसको जाना, वो भी ज्ञान मल हुआ। ज्ञान का मल नहीं है, मल को जानने वाला ज्ञान है, मल संबंधी ज्ञान है, ऐसा उल्टा लगाना, वो समास उसमें नहीं, ज्ञान का मल नहीं है, ज्ञान में मल नहीं है, मल का ज्ञान है, ये मल संबंधी ज्ञान है। तो ये यहाँ कोई मल लगा था तो उसको जाना, ये भी ज्ञान मल है, और उसको मल कहते हैं, उसको दाग कहते हैं, उसको डर्ट कहते हैं, ये शब्द को भी जाना, तो ये क्या हुआ? अभिधानम, या ये ज्ञानमल। यानी ज्ञानमल क्या करता है? अर्थमल को भी जानता है और शब्दमल को भी जानता है। शब्द अपने को नहीं जान रहा है, शब्द तो जड़ है, दोषी नहीं आने वाले 3 दिन। अच्छा, आप वहां बैठ सकते हैं, हाँ चाहिए तो, अभी तो कंफर्टेबल है ना, तुम्हारे बारा है ना, हाँ ठीक। ये जो हमने कल देखा था ना, अर्थमल, शब्दमल और ज्ञानमल, उसकी चर्चा अभी हो चुकी। ज्ञान, ज्ञान होना यही ज्ञानमल, मल का ज्ञान, ज्ञान का मल नहीं। मैं अभी वही बात बार बार बता रही हूँ, यहाँ कोई विभाव लेना नहीं है, मल संबंधी जो ज्ञान है, जीव जान रहा है ना मल को, चेहरे के ऊपर दाग लगा तो हम उसको जानते हैं, तो वो क्या हुआ? दागमल, ए दाग क्या, ज्ञान दाग, ज्ञानमल क्या है ना, उस संबंधी हमारा ज्ञान। अभी नहीं समझे क्या प्रश्न है? अभी फिर अभी बिगड़ने का सवाल ही नहीं है, भाव मल यानी बिगड़े हुए परिणाम समझो। अब ये बिगड़े हुए परिणाम को जाना किसने? वो ज्ञान मल हुआ। आप उसमें दोनों में कंफ्यूजन हो कर रहे, जो बिगड़ा हुआ परिणाम तो भाव मल में चला गया, उस भाव मल को किसने जाना है? ज्ञान ने जाना है।
देखो, जो मल देखने के बाद तुमको जुगुप्सा आई, क्षित्री आई तुम्हारी भाषा में, तो वो चारित्र गुण की पर्याय है, यहाँ ज्ञान गुण की बात चल रही है। जब ये समझाती है तब उसको समझो, औरों को समझाने में उलझो मत। मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, उज्ज्वला एक ही बात 10 बार बता रही है, जब आप दूसरों को समझा रहे हैं तो आप यहाँ समझने की कोशिश करो। अभी समझ लेना, एक ज्ञान मल यानी क्या है, फिर से बता रही, देख लेना
अभी फिर से। अर्थ किसको कहना? एक्चुअल जो मल है, भाव मल है यानी बिगड़ा हुआ परिणाम हो, या शरीर के ऊपर जो गंदगी लगी हो, या जो कर्म है, उन सबको जो मल, जो एक्चुअल मल है, उसको अर्थमल कहना। उस मल को बताने वाले जो शब्द है, द्रव्य मल हमने कहा, वो क्या हुआ? शब्द मल हुआ। मल को जो शब्द बताता है उसको शब्द मल कहा। जो मल को जानता है उस ज्ञान को ज्ञान मल कहा। ज्ञान का मल नहीं है, बिगड़ा हुआ परिणाम नहीं है यहाँ, ख्याल है ना? ये ऐसा उल्टा समास नहीं करना। शब्द कैसे तैयार होते हैं, ज्ञान के मल को भी ज्ञान मल कहेंगे, जैसे हम ये से भावों में जो मल है उसको भाव मल कहा, वैसा यहाँ नहीं लगाना है। तो देखो, मल के वाचक शब्दों को अभिधान मल कहते हैं, तथा अर्थमल और अभिधान मल में उत्पन्न हुई बुद्धि यानी उत्पन्न हुआ ज्ञान, अब ये बिगड़ा हुआ ज्ञान नहीं है। जो गंदगी है उसको गंदगी जानना, इसको हम ज्ञान गंदगी कहा, यानी गंदगी का ज्ञान कहा, ज्ञान में गंदगी नहीं है, वो ख्याल है ना? तो प्रत्यय मल कहते। अथवा अब दूसरे और क्लासिफिकेशन अन्य प्रकार के बताते, नाम मल, स्थापना मल, द्रव्य मल और भाव मल। ये चार ही यहाँ के, वो क्षेत्रकाल वगैरह उसकी बात नहीं की, चार जो हम निक्षेप कहे थे ना उस अपेक्षा से यहाँ नाम मल, स्थापना मल, द्रव्य मल और भाव मल के भेद से मल चार प्रकार का है। अथवा इसी प्रकार विवक्षा भेद से मल अनेक प्रकार का है, यानी हमने उसके दो भेद किए, द्रव्य और भाव, फिर तीन भेद किए, अर्थ, अभिधान और ज्ञान, फिर यहाँ चार भेद किए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ऐसे अनेक अनेक अपेक्षाओं से विवक्षा बदलेंगे तो उसके अनेक भेद हो सकते हैं। इतनी बात ख्याल में आई? हाँ। अब ये मंग शब्द कैसा, मंगल शब्द कैसा तैयार हुआ है उसकी चर्चा यहाँ हम चल रही है। तो पहला निरुक्ति अर्थ हमने देखा था कि मलम गालयति, मल को जो नाश करे, उसका विध्वंस करे, उसको निकाल दे, तो उसको हमने मंगल कहा। अभी दूसरे प्रकार से, यानी देखो ये ना, उस मल का जो गालन करे, विनाश करे, ध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। अब दूसरा इसका निरुक्ति अर्थ ही दूसरे प्रकार से बताएंगे। पहले मलम गालयति कहा, अब कहेंगे मंगम लाती, ख्याल है? अब ये बता रहे यहाँ, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, अभी यहाँ नया विषय शुरू होता है। अथवा मंग शब्द सुखवाची है, यानी सुख को बताने वाला है, मंग यानी सुख, उसे जो लावे, प्राप्त करे, उसे मंगल कहते हैं। जो सुख को प्राप्त करावे, जो सुख को लावे, उसे मंगल कहते हैं। कहा भी है, ये कहा भी है, ऊपर जो 16 है उसको पढ़ेंगे हम। मंग शब्दोयम उद्दिष्ट पुण्यार्थस्याभिधायक तल्लातीति उच्यते सद्भी मंगलम मंगलार्थिभी। क्या कहते हैं? यह मंग शब्द पुण्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करने वाला माना गया है। यानी वो मंग शब्द क्या बताता है, पुण्य रूप अर्थ में उसको, उसकी हम यूटिलाइज करते हैं उसको। उस पुण्य को जो लाता है उसे मंगल के इच्छुक सत्पुरुष मंगल कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब उसके आगे 17वां ऊपर हम पहले गाथा पढ़ेंगे। पहले तो पुण्य रूप का प्रतिपादन करने वाला, इन्हें पुण्य को लाने वाला है। अब पाप की बात करेंगे। पापमलमिति प्रोक्तम उपचार समाश्रयात् तद्धिगालयति युक्तम मंगलम पंडितय जनय। उपचार से पाप को भी मल कहा है, इसलिए जो उसका गालन अर्थात नाश करता है उसे भी पंडित जन मंगल कहते हैं। यानी पुण्य को जो लावे और पाप को जो गलावे, नष्ट करे, विध्वंस करे, उसको मंगल कहते हैं। हाँ, पंडित जन, ये यहाँ पंडित तो अरिहंत भगवान को, जिनेंद्र भगवान को कहा पंडित जन। अब ये निरुक्ति की बात यहाँ समाप्त करते हैं। अथवा कर्ता अर्थात किसी उद्दिष्ट कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा या जिसके लिए, जिसके किए जाने पर कार्य की सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे भी मंगल कहते हैं। यानी विशिष्ट कार्य को करने वाला है या जिसके द्वारा वो कार्य संपन्न होता है उसे भी मंगल कहते हैं। इस तरह मंगल शब्द के अर्थ विषय निश्चय के उत्पन्न करने के लिए मंगल शब्द की निरुक्ति कही गई है। हमें इतने जो मल को गलावे और जो सुख को लावे उसको मंगल कहते हैं, ये इन शॉर्ट हो गया जो हमने अभी तक पढ़ा। ये निरुक्ति वाला अर्थ हुआ। कौन से नंबर पर था? पांचवे। पहले धातु देखा, फिर निक्षेप देखा, फिर नय देखे, उसके पश्चात एकार्थ देखा, निरुक्ति देखा, अब अनुयोग बताएंगे। ये चार अनुयोग वाले ये अनुयोग नहीं है। पहले अनुयोग शब्द का अर्थ क्या होता है उसको बताएंगे और फिर वो क्या है अनुयोग उसकी भी बात करेंगे। अब मंगल का अनुयोग कहते हैं, अर्थात अनुयोग द्वारा मंगल का निरूपण करते हैं, उसका विशेषार्थ। जिनेन्द्र कथित आगम का पूर्वापार संदर्भ मिलाते हुए अनुकूल व्याख्यान करने को अनुयोग कहते हैं। अनु और योग, योग यानी जोड़ना, अने अनु यानी अनुकूल, उसके अनुकूल। तो जिनेन्द्र भगवान की जो शास्त्र, जो आगम परंपरा चली आ रही है उसमें पहले और बाद में ऐसे जहाँ कोई विधान आते हैं तो उसका जो उसको मिलान करने पर उसके अनुकूल व्याख्यान करना, यानी पहले का और पीछे का संदर्भ बता देना। कोई भी बात करते हैं तो उसके लिए कोई पूर्व का संदर्भ, हम कहते हैं ना संदर्भ, यानी वो इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, रेफरेंस। पहले रेफरेंस उसको किस रेफरेंस के साथ ये सूत्र चला रहा है। सत्वार सूत्र में ऐसे बहुत बार आता है, सूत्र इतने छोटे छोटे होते हैं कि वही बात फिर नहीं दोहराते। एक बार एक कोई बात बताई है तो 10-10, 12-12 सूत्रों तक वही बात चलेगी आगे। हर समय वो तो वो उपकार करने वाला है, वो ऐसा है वैसा है, ऐसे बात नहीं करेंगे। एक बार बता दिया फिर आगे वही बात चलेगी, तो उसको कहते हैं अनुयोग उसका, यानी वही रेफरेंस वही संदर्भ चलता रहता है आगे के सूत्रों में। तो पहले कहीं बात आती है और आगे कहीं बात आती है तो दोनों को मिलान करके वो बताते हैं। अथवा सूत्र का उसके वाच्य रूप विषय के साथ संबंध जोड़ने को अनुयोग कहते हैं। यानी जो सूत्र है, जो श्लोक है, गाथा है, उसमें जो विषय बताया है तो वो सूत्र में से वो विषय, वो अर्थ किस तरह से निकलते हैं, तो इस तरह उसमें संबंध जोड़ने को, जोड़ना ये शब्द है ना, योग शब्द क्या बताता है, जोड़ना। तो सूत्र का उसका जो वाच्य है उसके साथ जो संबंध संदर्भ जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उसको अनुयोग कहते हैं। अथवा एक ही आगम कथित सूत्र के अनंत अर्थ होते हैं, अनंत बताए, सूत्र एक होगा और उसमें से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, इसलिए सूत्र की अणु संज्ञा है। सूत्र उसे ही कहते हैं कि जिसमें मिनिमम पॉसिबल शब्द यानी अक्षर यूज करते हैं, उसमें एक भी अक्षर ज्यादा होगा। ये राजवार्तिक आदि जो ग्रंथ है ना, तत्वार सूत्र की टीका है एक राजवार्तिक, उसमें ऐसे ही शब्द, ये च शब्द क्यों डाला, यहाँ नहीं चाहिए था, एक एक अक्षर पर बहस चलती है। सूत्र उसे ही कहते हैं जिसमें मिनिमम पॉसिबल वहाँ अक्षर की रचना चाहिए और उसमें मैक्सिमम पॉसिबल अर्थ आना चाहिए, यानी कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक जो उसमें अर्थ उसमें गर्भित हो उसको सूत्र कहते हैं। ये सूत्र की डेफिनेशन है। ये वार्तिक यानी वो वाक्य वगैरह वो अलग बात है, श्लोक है या प्रवचन है, तो उसमें तो हम लंबा चौड़ा एक सूत्र का विस्तार हम 10-10 पेज तक लिख सकते हैं। तो हमें क्या लगता है, हम कितना होशियार, देखो एक सूत्र और हमने 10 पेज उसके ऊपर विवेचन किया, ऐसा नहीं, उसको बुद्धि नहीं लगती है। पर जो 10 पेज में समझा सके वो मैटर एक सूत्र में इकट्ठा कर देना, ये बुद्धिमानी का काम है। तो क्या कहते हैं कि इसलिए सूत्र को अणु कहते हैं, अणु है छोटा। उस सूक्ष्म रूप सूत्र का अर्थ रूप विस्तार के साथ संबंध के प्रतिपादन करने को अनुयोग कहते हैं। जो शॉर्ट में बताया है उसका एक्सप्लेनेशन पूरा करना, यानी वो सूत्र का अर्थ बता दिया तो उसके सूत्र का और उसके अर्थ का जो मिलान करना, संबंध जोड़ना, उसको अनुयोग कहेंगे। अब इसमें कौन कौन सी बातें, क्या क्या करना चाहिए अनुयोग में, कौन कौन से अनुयोगों के द्वारा ये जानना है कोई पदार्थ, तो उसकी पहले ऊपर हम गाथा पढ़ेंगे। किं कस्केन कथव केवचिरं कदि विधोय भावोति छहियणियो गद्दारे इसौ भावानुगंतौ वा। छह प्रश्न पूछेंगे यहाँ, और उस प्रश्नों के जो उत्तर है यानी ऐसे ही छह अनुयोगों के द्वारा ये मंगल शब्द का भी यहाँ अर्थ करेंगे। देखो यहाँ पदार्थ क्या है, एक बात यानी किम ऊपर है ना, किम कस यानी किसका है, मैं गाथा के साथ नीचे का अर्थ बता रही हूँ। केण यानी किसके द्वारा होता है, कथ यानी कहाँ पर होता है, केव चिरम यानी कितने समय तक रहता है, और कदि विधो यानी कितने प्रकार का है। कौन कौन सी बातें की, पदार्थ क्या है, किसका है, किसके द्वारा होता है, कहाँ पर होता है, कितने काल तक टिकता है और कितने प्रकार का है, ये छह बातें होंगी। इन छह अनुयोग द्वारों से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान करना चाहिए, यानी किसी भी पदार्थों का ज्ञान इन छह बातों से करना चाहिए। इस वचन से अनुयोग द्वारा मंगल का निरूपण किया जाता है। तत्वार सूत्र में भी ये बात है, देखिए नीचे लिखा है, इसमें नीचे से चौथी लाइन वो उसमें तीसरा फुटनोट है ना, फुटनोट नंबर तीन की नीचे से चौथी लाइन, उसमें क्या लिखा है, तत्वार सूत्र का सूत्र लिखा है, तानी इमानी षड अनुयोग द्वाराणी निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण और स्थिति विधानता, ये छह अनुयोग द्वार है। उसमें भी ये सूत्र आया था, पहले अध्याय में सातवां ही सूत्र ये। देखो उसके आगे भी पढ़ते हैं, तत्र किम इति अनुयोगे वस्तु स्वरूप कथनम निर्देशः। पहला अनुयोग कौन सा है, किम पदार्थ क्या है, तो उसमें क्या बताना है कि वस्तु का स्वरूप कथन करना है, ये मंगल है या जो कुछ है वो बताना है, तो उसको कहेंगे निर्देश। अभी जो सूत्र में आए ना निर्देश स्वामित्व वगैरह बात, उसके आगे क्या, कस्य इति अनुयोगे पदार्थ क्या है, ये जो अनुयोग है उसमें क्या बताते हैं, स्वस्य इति अधिपत्य कथनम स्वामित्वम, यानी निर्देश स्वामित्व की बात चल रही है अभी। स्वामित्व किसी किसको कहना, वो पदार्थ किसका है ये बताया जाता है उसको, यानी उस पदार्थ का स्वामी कौन है। हम वो लेशा वगैरह प्रकरण देखते थे ना पहले, ये शुक्ल लेशा के स्वामी कौन है, यानी कौन कौन से जीवों में शुक्ल लेशा पाई जाती है, ये इसको स्वामित्व कहते। अब यहाँ जो मंगल है तो मंगल किसका है, ये इसका अनुयोग होगा, इसको स्वामित्व कहते हैं। आगे निर्देश स्वामित्व, फिर कौन सा है, साधन, तो के नैति प्रश्ने कारण निरूपणम साधनम, यानी किसने ऐसा प्रश्न पूछेंगे हम या किसके द्वारा ये किया गया, तो जो उत्तर आएगा उसको कहते हैं कारण, और वो कारण का निरूपण करना ही साधन है। कस्मिन इति अनुयोगे, कस्मिन यानी किसमें है, कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न पूछने पर आधार प्रतिपादनम अधिकरणम, उस पदार्थ का जो आधार का प्रतिपादन होता है उसको अधिकरण कहते हैं। कियत चिरम इति प्रश्ने, ये कितने काल तक रहेगा, ऐसा प्रश्न पूछने पर काल प्ररूपणम स्थिति, उसका काल बताना उसको कहते स्थिति। हम कर्मों की स्थिति बताते ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो क्या बताते हैं, वो कितने काल तक रहेगा उसको कहते स्थिति। और कति विधे ने कितने प्रकार का है, इति अनुयोगे प्रकार कथनम विधानम, ये विधान है। यानी तत्वार सूत्र में जो अभी अभी हमने देखे थे छह भाग, कि निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति और विधान, साधन साधना नहीं साधन, अधिकरण स्थिति और विधान, विधानता यानी विधान, इन छहों द्वारे ऐसा आगे बताने पदार्थों का निरूपण किया जाता है। अब अगले पेज पर, अब इसमें से एक एक बात करेंगे। पहला प्रश्न था किम यानी मंगल क्या है, पहला प्रश्न है ना पदार्थ क्या है, अनुयोग अभी छह अनुयोग हमने देखेंगे, तो मंगल क्या है, तो उसका उत्तर है जीव मंगल है। देखो ये बात यहाँ संस्कृत में भी लिखी है पहले पेज पर, किम मंगलम जीवो मंगलम, यानी जीव मंगल है, तभी उसकी चर्चा करेंगे। किंतु जीव को मंगल कहने से सभी जीव मंगल रूप नहीं हो जावेंगे। क्यों? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणत जीव को और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल माना है। ख्याल है, जीव मंगल है। अभी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखेंगे तो जो जीव उस मंगल पर्याय रूप से परिणत हो गया है, ऐसा जीव द्रव्य लेना वहां वो मंगल है, या केवल ज्ञान की पर्याय मंगल है। ये दो बातें यहां कही है ना। अब दूसरा प्रश्न पूछेंगे, कस्य यानी किसके है, तो मंगल किसके होता है? तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्यता को धारण करने वाले अर्थात सदाकाल एक स्वरूप रहने वाले और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय स्वरूप जीव के मंगल होता है। पर्यायार्थिक नय में उत्पाद व्यय वाला लेना और द्रव्यार्थिक नय में नित्यता को धारण करने वाला लेना। यहाँ पर जिस प्रकार कंबल देवदत्त का होते हुए भी देवदत्त से कंबल का भेद है, जैसे हमने कहा ये पेंसिल मेरी है तो मेरे में और पेंसिल में भेद है ना, वैसे देवदत्त एक कोई भी नाम लिया है आचार्य ने, देवदत्त का कंबल है ब्लैंकेट, वो देवदत्त का है तो उसमें भेद है ना। तो दो भिन्न चीजों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। और कहाँ षष्ठी विभक्ति लगाती है? जैसे हम आपके घर में आए तो आपने चांदी की थाली सामने रखी, हाँ, तो हमने उस पर नाम देखा तो हमने क्या कहा, ये अश्विन भाई की थाली है। फिर हमने दूसरा पूछा, ये कैसी थाली, किसकी है? तो प्रेरणा बेन ने बताया ये चांदी की थाली है। यानी जिसको हम अश्विन भाई की कहते हैं उसको चांदी की भी कहेंगे। यानी जो की विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति जो लगी है, वो तो भिन्न चीजों में भी लग सकती है और अभिन्न में भी लगती है, क्योंकि चांदी और थाली अभिन्न चीज है। ये बंगड़ी मेरी है कहेंगे तो मैं भिन्न हूँ, बंगड़ी भिन्न है, फिर भी मेरी ऐसा उसमें लगता है, षष्ठी लगती है, बराबर। और सोने की बंगड़ी, उसमें भी वो की लगेगा, जबकि वो सोने से बंगड़ी विभक्त नहीं की जाती है। यानी सोने की बंगड़ी कहा कहना या मेरी कहना, दोनों में तो षष्ठी ही लगती है, परंतु दो भिन्न भिन्न चीजों में लगना और एक ही चीज में लगना ये अलग बात है ना। वही बात यहाँ समझा रहे, पूरा पढ़ेंगे ख्याल आएगा आपको। देखो क्या कहते हैं, देवदत्त से कंबल का भेद है, उस प्रकार जीव का मंगल रूप पर्याय से भेद नहीं है। जीव भिन्न है और उसकी पर्याय भिन्न ऐसी नहीं है। अभी मैंने बताया सोने की बंगड़ी, तो सोने से बंगड़ी भिन्न नहीं है, परंतु कोई कमला विमला की बंगड़ी कहेंगे तो वो विमला भिन्न है और बंगड़ी भिन्न है। वैसे यहाँ जीव के मंगल होता है ऐसा कहेंगे तो जीव के जो मंगल रूप पर्याय वो जीव से भिन्न नहीं है, जीव की ही है, वो जीव में ही है। अब यहाँ तो की लगाना है, मैं है वो आगे लगेगा। क्या कहते हैं, देखो जीव का मंगल रूप पर्याय से भेद नहीं है, क्योंकि यह अंगूठी स्वर्ण की है। अभी हमने बंगड़ी का यहाँ अंगूठी का, सोने की अंगूठी ऐसा कहते हैं, यहाँ पर अभेद में अर्थात अंगूठी रूप पर्याय स्वर्ण से अभिन्न होने पर भी जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति देखी जाती है, यानी किसका, इसका, की के आगे जो लगाते ना, मुँह हिंदी में किका या लगता है और मराठी में च चाची लगता है, त्याचा है माझा है ऐसा है। वो तो सप्त षष्ठी की जो विभक्ति है उसको कहते हैं संबंध बताने वाली, वो षष्ठी विभक्ति। आपको मालूम है? नहीं मालूम, गुजराती में नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, ए मारो छे नोने नूना, हाँ देखो जैसे स्वर्ण और वो अंगूठी अभिन्न है और उसमें भी षष्ठी लग सकती है, वैसे ही उसी प्रकार जीवस्य मंगलम, यहाँ पर भी अभेद में षष्ठी विभक्ति समझना चाहिए, यानी जीव भिन्न है और उसका मंगल कोई अलग बाहर है, ये हमने इसको मंगल कहा तो ये मेरा मंगल, ऐसा नहीं हो सकता, वो जीव की ही पर्याय है इसलिए जीव का ही मंगल ऐसा कहते हैं। इस तरह संबंध कारक में अनेकांत समझना चाहिए, संबंध कारक यानी वो षष्ठी संबंध बताने वाला, तो या भिन्न भिन्न चीजों में भी संबंध बता सकते हैं या अभिन्न एक ही चीज में भी वो षष्ठी विभक्ति लग सकती है, इसलिए उसको अनेकांत कहा। दोनों प्रकार से वो षष्ठी विभक्ति का उपयोग होता है इसलिए उसमें अनेकांत बताएं। इस तरह संबंध कारक में अनेकांत समझना चाहिए, अर्थात कहीं पर दो पदार्थों में भेद होने पर भी संबंध की विवक्षा से षष्ठी कारक होता है और कहीं पर अभेद होने पर भी षष्ठी कारक का प्रयोग होता है। ये ख्याल में आया, भेद में षष्ठी और अभेद में षष्ठी, ये किसका है पूछेंगे ना, ये शर्त किसका है, तो भेद में बताना है तो ये शर्त हम किसी का नाम ले लेंगे, रमेश का है, और ये शर्त किसका है तो ये तो कॉटन का है या रेशम का है, जो कुछ है नायलॉन का है, ख्याल है ना, भेद में और अभेद में एक बात ख्याल आई। षष्ठी विभक्ति जो है वो भेद में भी भिन्न चीजों में भी लग सकती है और अभिन्न चीज में भी लग सकती है। अब अगला वाला, ये हम 6 अनुयोग देख रहे हैं पेज नंबर 36 पर, यानी 6 प्रकार से पदार्थों का मंगल का हमारा वर्णन चल रहा है। देखो किम यानी कौन है, मंगल क्या है, तो जीव मंगल है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, ये किसका है मंगल, तो जीव का है, तो जीव का है कहेंगे तो ये जीव का शरीर है ऐसा भी कहेंगे, क्या ऐसा मंगल उससे भिन्न है क्या, तो ऐसा नहीं है, जीव का मंगल कहते हैं तो जीव की पर्याय में ही वो मंगल पर्याय रूप से परिणत हुआ है, ऐसा जीव है, इसको कहते हैं अभेद में षष्ठी लगाना, ख्याल आया, उसका संबंध बताया ना, जीव का संबंध बताया, जैसे हम कहेंगे ये द्रव्य की पर्याय है, सम्यक दर्शन यह जीव द्रव्य की पर्याय है, तो की लगाया, उसका संबंध बताया, तो क्या द्रव्य से पर्याय भिन्न है, द्रव्य के बाहर है कहीं पर, जैसे लाठी वाला कहते हैं हम, तो वो जो देवदत्त है उससे वो लाठी भिन्न है, तो हम कहेंगे लाठी वाला देवदत्त है या देवदत्त की लाठी, ऐसा कहेंगे, संबंध बताए ना, ये आपका घर ऐसा कहा, वो का आप में और वो भिन्न घर में का प्रत्यय लगाया, और ये मिट्टी का घर, ये ईंट का पत्थर का घर, तो जिस चीज से बना है उसी में का लगाया, दोनों में लग सकता है, भिन्न चीजों में भी लग सकता है और अभिन्न चीज में भी लग सकता है। जब यहाँ जीव का मंगल कहते हैं, ये मंगल जीव का है, तो उसमें ये अभिन्न कारक समझना, संबंध जो बताया है वो जीव के पर्याय में है, वो जीव का ही है, जीव से भिन्न चीज नहीं है, इतना बताना है। अब अगला प्रश्न पूछेंगे केन, केन ने किसके द्वारा है, किस कारण से उत्पन्न होता है, तो किस कारण से मंगल उत्पन्न होता है, तो उसका उत्तर है जीव के औदयिक औपशमिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है। देखो यहाँ औदयिक भाव को भी लिया है, वो समझाएंगे कैसे, क्या कहते हैं ये मंगल कैसे उत्पन्न होता है या किस कारण से उत्पन्न होता है, औदयिक औपशमिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है, उसका विशेषार्थ बताते हैं। यद्यपि कर्मों के उपशम क्षय और क्षयोपशम से सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति होती है, जो रत्नत्रय जिसको हमने मंगल कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मंगल रूप है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो निमित्त की भाषा में बोलना है, हो या कर्म कुछ नहीं कराते, जीव स्वयं अपनी योग्यता से परिणत होता है, परंतु ये निमित्ताधीन ये निमित्त प्रधान शास्त्र होते हैं, तो उसमें निमित्त की मुख्यता से बात होती है, मुख्यता निमित्त की है, निमित्त से होता ऐसा अर्थ नहीं लगाना यहाँ, तो यहाँ कर्मों में कौन सी अवस्था पाई जाती है, तब कर्म का उपशम पाया जाता है, तो यहाँ औपशमिक सम्यक दर्शन है, कर्म का वहाँ क्षोपशम है, दर्शन मोनी अनंतानुनि वगैरह का, तो यहाँ जीव में क्षौपशमिक सम्यक्त्व है। वहाँ अनंतानुबंधी और दर्शन मोह का क्षय है, तो यहाँ जीव में क्षायिक सम्यक्त्व है। तो यहाँ क्या लिखा है, कर्मों के उपशम, क्षय और क्षौपशम से सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनसे मंगल की उत्पत्ति मानना तो ठीक है, परंतु औदयिक भाव से मंगल की उत्पत्ति नहीं बन सकती है। ऐसा प्रश्नकार का क्या प्रश्न है, औदयिक भाव को मंगल कैसे कहते हो आप? इसलिए यहाँ पर औदयिक आदि भाव से मंगल उत्पन्न होता है, यह कहना किस प्रकार संभव है? अब ये तो प्रश्न हुआ, उसका समाधान करते हैं। इसका समाधान इस प्रकार समझना चाहिए कि यद्यपि सभी औदयिक भाव मंगल की उत्पत्ति में कारण नहीं है, फिर भी कौन कौन लिया, पूजा भक्ति तथा अनुव्रत महाव्रत, ये बिना सम्यक दर्शन वाले क्यों नहीं लेना है? सम्यक तो सहित वाले जो पूजा भक्ति के चौथे वाले के परिणाम है, पांचवे वाले के जो अनुव्रत के परिणाम है, छठे सातवें आगे के जो महाव्रत के परिणाम है, आदि जो प्रशस्त राग रूप औदयिक भाव मंगल का कारण है, यहाँ उसमें उपचार किया है, ख्याल है ना। सम्यक दृष्टि के राग भाव को भी परंपरा कारण कहते हैं। क्यों? परंपरा मोक्ष का कारण कहा है, क्यों? उन राग भाव का अभाव करके वो वितरागता बढ़ाने वाला है, वो राग भाव से मोक्ष नहीं होने वाला तीन काल में, फिर भी वो सहचर देखकर, सम्यक दर्शन है, वितरागता है, और उसके साथ साथ उसको देखकर उस पर भी आरोप आता है, ये भी मंगल है, इसके ख्याल आते हैं ना। मंगल क्या है? वितराग भाव मंगल है। अब जितना वितराग भाव है, जितना ज्यादा है, उतना राग भाव कम है। शुरू में चौथे पांचवे वाले को राग ज्यादा है, वितरागता कम है, परंतु तो वितरागता को हम, वो तो मंगल है ही है, परंतु उसके साथ वाला जो राग भाव है, कैसा कैसा राग हो सकता है? जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चा का भाव है, अनुव्रत लेने का भाव है, महाव्रत के भाव है, यह है तो औदयिक भाव, परंतु सम्यक भी जीव के है, इसलिए इस पर भी उपचार से मंगलपने का आरोप आता है। औदयिक भाव समझते क्या है? क्या है? हाँ, उदय से। हमने जैसे उपशम से होता है तो औपशमिक भाव कहा, क्षौपशम से होता है क्षौपशमिक भाव कहा, और वहाँ क्षय है कर्मों में, और यहाँ क्षायिक भाव, उसका नाम है वैसा। वैसे जीव के जो परिणाम है औदयिक भाव, तो वहाँ कर्म का, विशिष्ट कर्मों का उदय पाया जाता है। कौन कौन से औदयिक भाव है? हाँ, चार गति, चार कषाय, हाँ, तीन वेद, हाँ, मिथ्यात्व, अदर्शन, अज्ञान, असंयम भाव, ये सब क्या है? औदयिक भाव है।
देखो, इसमें से जो कषाय रूप जो भाव है, उनको विशेष रूप से औदयिक भाव कहते हैं, और उन औदयिक भावों के कारण, यानी वो तो समझते हैं कि वो तो कर्म के उदय से हुए हैं, तो उसमें मंगलपना कैसा पॉसिबल है, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि वो जो औदयिक भाव है, अभी जो असिद्धत्व है, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, ख्याल में है ना। अब लेशाएं हैं, उससे भी कोई विशेष रूप से ये नहीं है, लेकिन जो कषाय से संबंधित है, ऐसे भाव से मंगलपना कैसा पॉसिबल है, ऐसा इनको पूछना है।
अभी मिथ्यात्व को लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, ख्याल है ना।
इसलिए यहाँ
कौन सा पुण्य,
सुनो, यही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है, क्योंकि अनुव्रत कौन पालेगा? मिथ्या दृष्टि भी पालेगा, लेकिन उसको अनुव्रत नहीं कहते। महाव्रत भी पालेगा, लेकिन उसको सांचे महाव्रत नहीं कहते। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, मुनि योग्य, जिनके शुद्धि है, वितरागता है, उनके जो शुभ परिणाम है महाव्रत पालन करने के, या पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, उसके जो अनुव्रत पालन करने के परिणाम है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, उसके भगवान की पूजा वंदना आदि करने के जो परिणाम है, उनको उपचार से मंगलपना कहा गया है, ख्याल में है। और शास्त्रों में ऐसा भी कथन आता है कि सम्यक दृष्टि जीवों के पुण्य परिणाम भी परंपरा मोक्ष का कारण है, ख्याल में है? क्योंकि वो शुभ परिणामों से बंध ही होने वाला है, लेकिन वो अशुभ में नहीं जाता है और शुभ में से दोबारा शुद्ध में जाता है, इसलिए उसको उपचार से परंपरा मोक्ष का कारण कहा है। तो वो हम पुण्य परिणाम भी मोक्ष का कारण है समझे तो हम खाली पुण्य को ही पकड़ते और उसको ही भजन करते बैठते हैं, वैसा ही है नहीं। ख्याल में आई बात?
देखो अभी चौथा प्रश्न पूछेंगे, पहले मंगल क्या है तो जीव मंगल है कहाँ था, दूसरे किसके होता है तो जीव के मंगल होता है, तीसरे प्रश्न में किस कारण से होता है तो औपशमिक शायिक आदि भावों से, क्षौपशमिक भाव औदयिक भी उसमें ले लिया। अब चौथा प्रश्न है क्व या कथ, यानी मंगल किसमें उत्पन्न होता है, तो जीव में मंगल उत्पन्न होता है। जैसे वहाँ जीव का मंगल कहा, वैसे यहाँ जीव में पर भी समझाएंगे। में यह शब्द विभक्ति वो कौन सी कहलाती है, याद है कुछ मालूम है आपको? उसको सप्तमी कह, सप्तमी कहते। षष्ठी विभक्ति जो है वो संबंध सूचक होती है, ये पेन किसका है उसमें षष्ठी लगती है, और हम घर में बैठे हैं वो में लगा ना, वो उसको सप्तमी कहते हैं, किसके अंदर। तो जीव में मंगल उत्पन्न होता है, जिस प्रकार कुंडे से उसमें रखे हुए बेरों का भेद है, हमने किसी थैली में बेर रखे, गेहूं रखे, तो थैली भिन्न है और थैली में हमने बेर रखे, तिजोरी में रुपए रखे, हाँ ये जल्दी समझ में आएगा। हाँ तो ये में है ना, उससे भिन्न है, वो तिजोरी से उसमें रखे हुए रुपए भिन्न है। उस प्रकार जीव से मंगल पर्याय का भेद नहीं समझना चाहिए। तो जब हम कहेंगे जीव में मंगल है तो जीव भिन्न है और उसके अंदर मंगल है, ऐसे जैसे तिजोरी के अंदर रुपए भिन्न है वैसे जीव में मंगल भिन्न है उसे ऐसा नहीं समझना। षष्ठी में जैसे हमने जीव का मंगल है ऐसा कहे ना, वैसे यहाँ जीव में मंगल है, वो भी अभिन्न पदार्थ में प्रत्यय लगाया है, सप्तमी विभक्ति लगाई है। देखो इसको पढ़ते, उस प्रकार जीव, सेकंड लाइन, जीव से मंगल पर्याय का भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सारे स्तंभ अर्थात वृक्ष के सार में स्तंभ है। यहाँ पर जिस तरह अभेद में भी सप्तमी विभक्ति की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार जीवे मंगलम, अभी हमने तिजोरी का उदाहरण लिया, तिजोरी में रुपए है, यहाँ हम क्या कहेंगे, अभेद में बताना है ना कि जीवे मंगलम, यहाँ पर भी अभेद में सप्तमी विभक्ति समझना चाहिए। हाँ, सप्तमी में आधार, उसका अधिकरण बताते हैं, अधिकरण कहते हैं उसको, सप्तमी विभक्ति का नाम ही अधिकरण है। ये जो हम षटकारक, षटकारक मालूम है, तो कर्ता ये पहली विभक्ति, कर्म ये दूसरी, हाँ द्वितीय विभक्ति, तृतीय में क्या लगता है करण, चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कहते हैं, पंचमी को अपादान कहते हैं, षष्ठी ये अधिकरण सप्तमी के लिए, क्योंकि ये जो कार्य संबंधी जब भी प्रश्न निकलते हैं तो वो कार्य किसने किया, क्या किया, किसके द्वारा किया, किसके लिए किया, किसमें से किया और किसके आधार से किया, वो षष्ठी विभक्ति षटकारक में नहीं लगती, ना षष्ठी लगती है ना संबोधन, वो अंतिम है ना, अष्टमी नहीं कहते उसको, संबोधन कहते हैं, यानी हे राम हे सीते बुलाने का जो है उसको संबोधन कहते हैं। तो ये दो छोड़कर आठ जो विभक्तियां हैं उसमें से षष्ठी विभक्ति और संबोधन छोड़कर बाकी वो जो छह विभक्तियां हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और सातवीं, इसको वो षटकारक में लगाते। तो यहाँ पर जो है वो जीव में मंगल है, यानी जीव से वो मंगल अभिन्न है, ऐसा लेना। तो ये अभेद में सप्तमी विभक्ति समझना चाहिए। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अधिकरण कारक के प्रयोग में भी अनेकांत है, यानी भिन्न में भी अधिकरण कारक लगता है और अभिन्न पदार्थ में भी अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति लगती है। अर्थात कहीं भेद में भी अधिकरण कारक होता है और कहीं अभेद में भी अधिकरण कारक होता है, यानी जीव किसमें उत्पन्न होता है, तो मंगल किसमें उत्पन्न होता है, तो जीव में उत्पन्न होता है। अब पांचवा प्रश्न क्या था, कियत चिरम यानी केव चिरम यानी कितने काल तक रहेगा। वो चिर शब्द मालूम है ना, चिरकाल कहते ना, तो ये केव चिर यानी कितने काल तक रहेगा, ऐसा कहते कब तक मंगल रहता है, तो नाना जीवों की अपेक्षा सर्वदा मंगल रहता है। सर्वदा ये कालवाचक है यानी हमेशा सदा काल, और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत, सादि अनंत और सादि शांत, इस प्रकार मंगल के तीन भेद हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्नोत्तर करेंगे इसी पर। पहले क्या कहा, नाना जीव की अपेक्षा सर्वदा मंगल रहता है। अब हम पूछेंगे तेरवा गुणस्थान, नाना जीवों की अपेक्षा कितने काल तक रहता है। सदा काल रहता है, क्योंकि इसको वो हमने निरंतर मार्गणा में लिया था कि इन गुणस्थानों का कभी अभाव ही नहीं होगा। जैसे पहला गुणस्थान हमेशा रहेगा, चौथा रहेगा हमेशा, पांचवा रहेगा, छठा सातवां रहेगा, श्रेणी का कभी कभी होता, मगर तेरहवा गुणस्थान तो हमेशा ही सदा काल रहेगा, इसको सदा काल रहने वाले गुणस्थान कहे। यानी दूसरे गुणस्थान में भी हमेशा जीव होते हैं, परंतु एक समय का भी तो वहां अंतर पड़ सकता है कभी कभी, परंतु ये बाकी जो अभी हमने देखे थे गुणस्थान, उसमें ऐसा कभी भी अवसर ही नहीं होगा कि एक भी जीव उस गुणस्थान में नहीं हो। यानी तेरहवें गुणस्थान वाले केवली नहीं हो, ऐसा कभी एक समय भी नहीं अवसर आएगा। यानी सदाकाल अरिहंतों की उपस्थिति होगी, तीर्थंकरों की उपस्थिति होगी, ये जिन धर्म का उपदेश और जिन धर्म और मोक्ष मार्ग का कभी भी अभाव हो ही नहीं सकता। भले यहाँ विशिष्ट क्षेत्र में पंचम काल में वो तीर्थंकर और केवली नहीं हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हमें अपनी चिंता नहीं होती ना, ये तो जैन धर्म का क्या होगा इसकी चिंता लगी रहती है। क्यों है ना? तो ये क्या कहते हैं, कब तक मंगल रहता है, तो नाना जीवों की अपेक्षा सर्वदा मंगल रहता है। और एक जीव की अपेक्षा वो कैसे घटित किया वो अभी बताएंगे। एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत, सादि अनंत और सादि शांत, इस प्रकार मंगल के तीन भेद हो जाते हैं। अब शंका पूछते हैं, मंगल में एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंतपना कैसे बनता है। अर्थात एक जीव के अनादि काल से अनंत काल तक मंगल होता है, यह कैसे संभव है, क्योंकि कोई अनादि से तो सिद्ध भगवान है ही नहीं है, तो पहले मिथ्यात्व में था और बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सिद्ध पर्याय प्रकट की, तो बाद में मंगल कहो, अनादि से उसको मंगल क्यों कहते हो। तो उसका समाधान, द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से, मुख्यता से मंगल में अनादि अनंतपना बन जाता है। क्या है ना, इसीलिए हम वो नय और निक्षेप सीखे थे, यानी वो हम द्रव्य को मुख्य कर रहे, उसकी पर्याय को यहाँ मुख्य नहीं कर रहे। क्या कहते, अर्थात द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से जीव अनादि काल से अनंत काल तक सर्वथा एक स्वभाव अवस्थित है, उसका जो ध्रुव ज्ञायक स्वभाव हमेशा अवस्थित है, सदैव ध्रुव है, अतएव मंगल में भी अनादि अनंत पना बन जाता है। वहां नहीं बनेगा, तो वो दूसरे में आएगा। अभी यहाँ तीन बात बताई, अनादि अनंत, सादि अनंत और सादि शांत, ख्याल है ना। शंका, इस तरह जो मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी जीव को मंगल पने की प्राप्ति हो जाएगी, ये अपना ही प्रश्न है, यह कोई दोष नहीं है। क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि में मंगलपना प्राप्त हो तो इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह इष्ट है, हम वही तो चाहते हैं। हमने तो सभी वो अनादि अनंत में सब आए, उसकी पर्यायों को हम नहीं देख रहे, हम द्रव्य को देख रहे, किंतु इससे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद आदि को मंगलपना नहीं प्राप्त होता। हम कोई जीव देखते हैं बहुत क्रोध करता है, अन्य की जाने दो, अपना ही बच्चा कोई बहुत क्रोध करता है, फिर भी हम उस बच्चे के प्रति हमको प्यार आता है, तो क्या हम उस क्रोध से प्यार करते हैं? वो क्रोध का तो हम निषेध करते हैं, तो क्रोध को गौण करके हम बच्चा है हमारा तो हम उसके साथ प्यार से बात करते हैं, है ना? तो क्रोध का हमारे में मन में भी उसका निषेध है। जैसे किसी व्यक्ति का नफरत नहीं करना है, वो उस व्यक्ति में जो मिथ्यात्व और अज्ञान है उसका हम निषेध करते हैं। अभी कोई चोर है तो वो जो उसकी चोरी की आदत है उसका निषेध करते हैं, और यदि वही व्यक्ति सुधर जाए, व्यक्ति तो वही है ना, तो हम उस विशिष्ट पर्याय का तो हम तो यहाँ जो मंगलपना है तो मिथ्या दृष्टि जीव को मंगल कहा, परंतु उसके मिथ्यात्व को मंगल नहीं कहा, उसके अविरति को मंगल नहीं कहा, उसके प्रमाद को मंगल नहीं कहा। उस जीव द्रव्य को लिया हमने वहां, द्रव्य को मंगल कहा। चले देखो फिर कि यह कोई दोष नहीं क्योंकि यह इष्ट है, यानी मिथ्या दृष्टि को अगर मंगलपना प्राप्त होता है तो इसमें कोई दोष नहीं, परंतु इससे ऐसा नहीं समझना क्या कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद आदि को मंगलपना नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि उनमें जीवत्व नहीं पाया जाता, वो तो उसका विभाव परिणाम है, वो जीवत्व जीव का जीवपना जो है ज्ञान दर्शन रूप वो उसमें नहीं पाया जाता। मंगल तो जीव ही है और वह केवल ज्ञान आदि अनंत धर्मात्मक है, ये धर्मात्मक कहा, गुणात्मक कहा, केवल ज्ञान आदि यानी वो केवल ज्ञान से पर्याय वाली केवल ज्ञान नहीं लेना यहाँ। जीव जो जान रहा है, जो ज्ञान है, तो ज्ञान में सामर्थ्य कितनी है, पूरी है कि अधूरी है, परिपूर्ण है। कब होगी परिपूर्ण सामर्थ्य? सामर्थ्य 13वें गुण स्थान में पूर्ण होगी, नक्की करो पहले। मैंने सामर्थ्य की बात की, प्रकट पर्याय की बात नहीं की, ख्याल है ना? सामर्थ्य मिथ्यात्व अवस्था में भी, अभी निगोद जीव में भी वो पूरे के पूरा सामर्थ्य पड़ा है वहां, तो वो सामर्थ्य जो है कितना है, सर्वज्ञत्व है वो उसमें। ज्ञान में कितना सामर्थ्य है, केवल ज्ञान का सामर्थ्य है, पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है, परिपूर्ण है कि नहीं, ज्ञान परिपूर्ण है कि अधूरा है, उसका गुण की बात है। ज्ञान परिपूर्ण है तो परिपूर्ण ज्ञान को हम क्या कहेंगे, केवल ज्ञान कहेंगे, ये पर्याय वाले केवल ज्ञान की बात नहीं हो रही है। उसका जो ज्ञान है वही केवल ज्ञान है, स्वभाव है वो। तो ये जो केवल ज्ञान आदि अनंत धर्म कहे उसको, ये तो ज्ञान पर घटित किया तो केवल ज्ञान का केवल दर्शन होगा, वो सम्यक हो गई, जो कुछ जीव के जो अनंत गुण है उसका परिपूर्ण सामर्थ्य सहित वो द्रव्य है, इसलिए मंगल जीव को ही कहा है, क्योंकि जीव में उसके अनंत धर्म और उसका अनंत सामर्थ्य विद्यमान है, सामर्थ्य हर समय विद्यमान है। जब हम निगोद की बात करते मंगल, तो उस हम उस सामर्थ्य को देख रहे, उस निगोद पर्याय को नहीं देख रहे। हम किस दृष्टि से, हम हमारी नजर कहाँ है, जिसको नए की भाषा, इसको नए का नाम देंगे तो हमें लगता है रे बहुत कुछ डिफिकल्ट हो रहा है। हम किस नजरिया से देख रहे हैं उस द्रव्य की तरफ, जीव को मंगल कहा है तो उसका जो अनंत धर्मात्मक अनंत सामर्थ्य है उसको अगर हम लक्ष्य में लेते हैं तो अनादि अनंत वो सामर्थ्य पड़ा है, तो अनादि अनंत मंगल है, और हम भी उस अनादि अनंत मंगल पने का दृष्टि करेंगे तो पर्याय में मंगल रूप से परिणत हो जाएंगे, ख्याल है ना? हाँ। देखो आवृत अवस्था में अर्थात केवल ज्ञानावरण आदि कर्म बंधन की दशा में मंगलीभूत केवल ज्ञानादि का अभाव है, अर्थात उस अवस्था में ये सर्वथा नहीं पाए जाते। यानी कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि छद्मस्थ अवस्था में केवल ज्ञानावरण आदि कर्मों का सद्भाव है, बराबर। ज्ञानावरण सभी है वहाँ, तो वहाँ केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, केवल ज्ञान रूप पर्याय वहाँ प्रकट नहीं है। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, यानी किसी ने क्या प्रश्न किया, आवृत अवस्था में, छद्मस्थ अवस्था में, केवल ज्ञानावरण वगैरह जो कर्म बंध की दशा में, मंगलीभूत ऐसा जो केवल ज्ञान है उसका अभाव है, तो उसका प्रश्न है ऐसा, तो उसको मंगल क्यों कहते हैं? तो ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि आवरियमाण, देखो आवरण करने वाले वो कर्म हुए, और आवरियमाण कौन हुए? केवल ज्ञान आवरियमाण है, जो आवृत तो होता है, आवृत तो होता है, उसको आवरियमाण कहा। जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? दृश्यमान। जो आवृत होता है उसको आवरियमाण, ख्याल है ना, जिसको आवरण किया जाता है वो आवरियमाण हुआ। तो केवल ज्ञानावरण उसका आवरियमाण कौन है? केवल ज्ञान। तो आवरियमाण अर्थात जो कर्मों के द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे केवल ज्ञानादि के अभाव में केवल ज्ञानादि को आवरण करने वाले कर्मों का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकता। वो क्या बताना चाहते हैं? अभी केवल ज्ञानावरण अभी है कि नहीं है? केवल ज्ञानावरण है, तो केवल ज्ञानावरण है किसको आवरण कर रहा है? केवल ज्ञान को आवरण कर रहा है, यानी केवल ज्ञान सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अगर केवल ज्ञान नहीं होता तो उसको आवरण करने वाला कर्म भी नहीं होता। तो यहाँ वो केवल ज्ञानावरण कर्म है, तो उसका अर्थ क्या है? वहाँ केवल ज्ञान है कि जिसको पूर्ण प्रकट नहीं होने दे रहा, पर्याय में है और ऊपर से ढक रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रकट पर्याय को ढकने वाले को आवरण नहीं कहते हैं, पर्याय में प्रकट ही नहीं होने दिया उसको आवरण कहते हैं, ख्याल है ना।
देखो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट है लेकिन अभी आवरण आया हुआ है, क्योंकि जैसा सूरज तो उग रहा है, सूरज तो चमक रहा है, लेकिन बीच में बादल आ जाते हैं तो वह उसका प्रकाश हमें नहीं मिलता है। वैसा केवल ज्ञान हर एक जीव को अभी प्रकट है लेकिन कर्मों के कारण वह आवृत हो गया है, लेकिन ये बात गलत है। अब जो प्रकट है, प्रकट तो एक समय के लिए होगा, तो प्रकट है उसको क्या आवरण करेगा, ख्याल में है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे कि अभी हमें केवल ज्ञानावरणी कर्म की सत्ता है, अभी केवल ज्ञानावरण कर्म है, तो किसको वो आवृत कर रहा है, किसको आवरण डाल रहा है? तो कहते केवल ज्ञान को, लेकिन यहाँ केवल ज्ञान रूपी पर्याय की बात न लेते हुए वो गुण की बात कह रहे हैं, ये बात समझना। अभी आप कहेंगे ज्ञान गुण और केवल ज्ञान गुण ऐसी दो बातें हैं, यहाँ तो स्वभाव की अपेक्षा से उसको गुण कहा है।
वो गुण की शक्ति कितनी है इसलिए उसको ही केवल ज्ञान कहा।
बोलो बोलो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि हर एक जीव को हर समय में केवल ज्ञान प्रकट है पर्याय में, लेकिन कर्म का आवरण आया हुआ है इसलिए वह प्रकट नहीं है। जैसा सूरज के बीच में बादल आ जाते हैं तो पूरा सूरज जो जितने रेशों में प्रकाशता है उसमें थोड़ी सी ढिलास आ जाती है, प्रकाश है लेकिन उतना प्रखर नहीं जितना विदाउट क्लाउड्स होंगे। वैसे अभी केवल ज्ञान तो प्रकट है लेकिन बीच में कर्म आ गए हैं इसलिए वो आवरत
ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है, ये बात इसमें सिद्ध की जा रही है।
यानी बादल के पीछे सूर्य पूरा प्रकाशित है, बराबर, ऐसा केवल ज्ञानावरण के पीछे केवल ज्ञान पर्याय में है और ऊपर से ढक गया, ऐसा है ही नहीं, ख्याल है। आवरण है का अर्थ क्या है? पर्याय में प्रकट ही नहीं हो गया, इसको आवरण कहते हैं। ये एक श्वेतांबर मत ऐसा ही है कि अंदर केवल ज्ञान निराकरण हो जाता है। आवरण कहते किसको है? कि वो पर्याय में प्रकट ही नहीं है, थोड़ा सा प्रकट है, उसको हमने अलग अलग नाम दिया,
मति ज्ञानावरण,
अंशिक, अंशिक प्रकट है, पूरा प्रकट नहीं है, अंश प्रकट है, तो पूरा प्रकट नहीं है उसी को कहेंगे ये केवल ज्ञानावरण का काम चल रहा है। परंतु जो आंशिक प्रकट है, वो जो अंश प्रकट है वो ज्ञान का अंश है का वो कर्मों ने उतना प्रकट किया है। जो जीव का जानना चल रहा है अभी छद्मस्थ अवस्था में, जीव जो जान रहे हैं वो ज्ञान का अंश है कि कर्मों के क्षोभशम से वो जानना चल रहा है। जितना कम जानता है या अधिक जानता है वो ज्ञान का ही अंश है कर्मों का है? कर्मों की वजह से जानते हैं। अभी अब समझो, अभी हम दृष्टांत अपना फिर दोहराएंगे। अभी सूरज ऊपर आया था 12 बजे और फिर क्या हुआ, मेघ आ गए बीच में काले, तो धुंधला धुंधला प्रकाश दिख रहा है। ये धुंधला प्रकाश मेघों का है कि सूर्य का है? नहीं नहीं, आप ही बताना। धुंधला जो प्रकाश है, जो प्रकाश दिख रहा है, जो मेघों की वजह से धुंधला हो गया, प्रकाश किसकी वजह से? प्रकाश सूर्य का है, ख्याल है ना? तो प्रकाश किसकी वजह से है? सूर्य का। जो प्रकाश है वो पूरे सूर्य का अंश है कि नहीं है? पूरे प्रकाश का अंश है वो, है ना? वो जो धुंधलापन है, जो रुका हुआ है, वो रुकावट है वो मेघों के कारण। और उस रुकावट के बावजूद भी जो वहां प्रकट है प्रकाश, वो प्रकाश किसका है? सूर्य का है, ख्याल है? अभी वैसे यहाँ कर्मों का आवरण है, आवरण के बावजूद भी जो ज्ञान प्रकट है वो किसका अंश है? स्वभाव का, ज्ञान का, केवल ज्ञान का कहा यहाँ उसको, उसको यहाँ केवल ज्ञान का अंश कहेंगे अभी। तो केवल ज्ञान का अंश है नहीं, अरे पर्याय में केवल ज्ञान है, अरे मिथ्या दृष्टि को केवल ज्ञान का अंश है, ऐसे प्रश्न उठेंगे अभी, ये सबकी चर्चा आने वाली है। जो अंश प्रकट है वो जीव के ज्ञान का अंश है कि नहीं, ये पहले नक्की करो। कर्मों के क्षोभशम ने ज्ञान प्रकट नहीं किया है, क्षोभशम के कारण ज्ञान जो प्रकट होना था वो रुक गया है, वो रुकावट में कारण है, ज्ञान होने में कारण नहीं है। केवली भगवान के सभी ज्ञानावरणों का क्षय हो चुका है, तो कर्मों के क्षय से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है क्या, क्या जीव के स्वभाव से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, पहले ये नक्की करेंगे स्वभाव से, है ना? और वहां निमित्त रूप से वो जीव पूर्ण अपने पूर्ण स्वभाव से जान रहा है, उसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान तो जैसा गुण था वैसा पर्याय में पूर्ण प्रकट हुआ, उसको भी हमने केवल ज्ञान कहा। अभी अभी हम वहां कुटे कहाँ गए वो, हम तो अभी अनादि अनंत बताए, अभी आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो ये सादी अनंत सादी शांत सभी सिद्ध करेंगे, ख्याल है? अलग अलग नए लगाते हैं ना तो ये सिद्ध होते हैं, हाँ नए नए अलग लगते हैं तो ये घटित हो जाता है। अभी देखेंगे उसकी चर्चा पढ़ेंगे हम, इसको फिर पढ़ती हूँ मैं। आवृत अवस्था में अर्थात केवल ज्ञानावरण आदि कर्म बंधन की दशा में मंगलीभूत केवल ज्ञानादि का अभाव है, अर्थात उस अवस्था में वे सर्वथा नहीं पाए जाते। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि आवरियमान यानी जो आवृत होता है उसको आवरियमान कहा, अर्थात जो कर्मों के द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे केवल ज्ञानादि के अभाव में केवल ज्ञानादि को आवरण करने वाले कर्मों का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकता। केवल ज्ञानावरण है उसका अर्थ ही क्या है कि वहाँ केवल ज्ञान है यानी वो सामर्थ्य रूप की बात चल रही है, पर्याय की नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, जीव के लक्षण रूप ज्ञान और दर्शन के अभाव मानने पर लक्ष्य रूप जीव के अभाव की भी आपत्ति हो जाती है। क्या कहते हैं, जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। यदि वो लक्षण का अभाव हो जाए तो क्या होगा, लक्ष्य का भी अभाव हो जाएगा। लक्ष्य यानी जिसका लक्षण बांधते उसको लक्ष्य कहते हैं। तो यदि ज्ञान दर्शन का सर्वथा अभाव हो जाए तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, ख्याल है ना? इस स्वभाव का कभी अभाव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जीव का अभाव होता हो ऐसा नहीं देखा जाता। हमने देखा था प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष आदि ने प्रत्यक्ष और परोक्ष हमने भेद देखे थे उसके। प्रत्यक्ष यानी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो लौकिक में हम व्यवहार में जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि हम तो देखते हैं कि अभी अभी ये हंस बोल रहा था तो हमने वहाँ जीव का अनुमान किया था और वो देह पड़ा रहा, हम क्या कहते, जीव चला गया। तो जीव था या जीव है ऐसा हम निश्चित कर देना, डॉक्टर चेक करते ना, अभी नहीं नहीं वो है, इज लिविंग, लिविंग है ने क्या, जीव का निश्चय किया तो प्रमाण से हम उसको जानते हैं। तो यहाँ कोई जीव ही नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष में केवल ज्ञानी तो सकल प्रत्यक्ष है, वो जानते ही है। अवधि मनोपर्य ज्ञानी वाले भी वो उसके विचारों को जानते हैं या रूपी पदार्थों को जानते हैं, अवधि ज्ञानी तो एक देश प्रत्यक्ष जानते हैं। और परोक्ष में स्मृति प्रत्यभिधान तर्क अनुमान, अभी अनुमान से हम कह सकते हैं, अनुमान से तो हम जान सकते हैं। और आगम तो सबसे बड़ा प्रमाण है अपने पास, तो आगम के द्वारा भी हम जानते हैं ये जीव है, ये संसारी है, ये मुक्त है, ये जीवों के भेद है आदि आदि। तो जीवों का कभी अभाव नहीं हो सकता, यानी जीवों का कभी अभाव नहीं हो सकता, यानी लक्ष्य है तो उसका लक्षण जो है ज्ञान दर्शन, उसका भी कभी अभाव नहीं होता है। और भले मिथ्या दृष्टि हो या कोई भी एकेंद्रीय भी क्यों ना हो, उसका ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार है, उसका जो चल रहा है, जानना 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 जानना, वो कभी रुकता नहीं है, ऐसा नहीं देखा जाए। किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उसकी उपलब्धि होती है यानी सिद्धि होती है, जीव है ऐसा सिद्ध होता है। यहाँ पर भस्म से ढकी हुई अग्नि के साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता। क्या कहते हैं, कोई जो दृष्टांत देंगे और दृष्टांत में अगर वो उल्टा सिद्ध होवे तो उसको कहते हैं व्यभिचार दोष आया। कोई हेतु देते हैं, दृष्टांत देते हैं और उसमें अपना पॉइंट जो प्रूव करना है उससे अगेंस्ट सिद्ध होता है, कुछ विरुद्ध बात सिद्ध होती है, तो हम क्या कहेंगे, उसमें व्यभिचार दोष आया। परंतु ऐसा भी नहीं होता है, वो कैसा है उसका विशेष अर्थ करेंगे, क्योंकि ताप और प्रकाश की वहां पर भी उपलब्धि होती है। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ ज्ञानावरण कर्म की बात है, वैसे अग्नि के ऊपर राख आती है ना, कोयला जलाते हैं तो हवा नहीं होगी तो वो मंद हो जाता है थोड़ा, और वो राख से ढकी हो जाती, फिर भी ढकने पर भी वहाँ उष्णता भी है और थोड़ा किंचित मंद है, फिर भी प्रकाश भी है और उष्णता भी है। तो भस्म से ढकी हुई अग्नि ने जो अभी मैंने बताया, तो उस दृष्टांत में भी वहाँ ताप और प्रकाश की सिद्धि होती है, वैसे यहाँ ज्ञान कितना भी मंद क्यों न हो तो वहाँ तो वो जीव की सिद्धि होती है, वो केवल ज्ञान की सिद्धि करेंगे। अभी तो केवल ज्ञान, वो पर्याय वाला केवल ज्ञान नहीं लेना है, ख्याल आया ना, यहाँ जीव का जो गुण है, धर्म है, उसकी बात चल रही है, शक्ति है उसकी, सामर्थ्य है, ज्ञान गुण की बात है। ज्ञान गुण को यहाँ केवल ज्ञान कहा है, गुण है उसमें तो पूरी उसकी शक्ति विद्यमान है। तब इसको ही पढ़ेंगे, देखो विशेषार्थ करते हैं। आवृत अवस्था में भी केवल ज्ञान आदि पाए जाते हैं, क्योंकि वे जीव के गुण हैं। यह जीव के गुण को केवल ज्ञान कहा है, तो ज्ञान गुण कहो आप, तो आवृत अवस्था में ज्ञान गुण है कि नहीं है, है ना। हाँ, यदि इस अवस्था में उनका अभाव माना जावे तो जीव का भी अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि हम तो गुण किसको कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रह जाए। अगुरु लघु क्या बना बताता है, हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और हाँ, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। मान लेते एक गुण बिगड़ गया, बिखर गया, नाश हुआ, तो दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, अनंत गुणों का नाश हो सकता है, तो अनंत गुणों का नाश होगा, एक का भी नाश होगा तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि अनंत गुणों के समूह को तो हमने द्रव्य कहा, उसमें से एक भी गुण चला जावे, एक का भी अभाव हो जावे तो पूरे द्रव्य का अभाव हो जाएगा, एक द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो पूरे विश्व का अभाव हो जाएगा, सभी द्रव्यों का अभाव हो जाएगा, है? ये तो जैसे ऐसे थियरी एक के ऊपर ये लॉजिक है, प्रूव करते इसको। क्या कहते हैं, यदि इस अवस्था में उनका अभाव माना जावे, किस अवस्था में, छद्मस्थ अवस्था में, अभी हमारे जैसे अल्पज्ञानी जो है, अल्पज्ञ है, उस अवस्था में यदि केवल ज्ञान का, ज्ञान गुण का अभाव माना जावे तो जीव का भी अभाव मानना पड़ेगा। इस अनुमान को ध्यान में रखकर शंकाकार का कहना है कि इस तरह तो भस्म से ढकी हुई अग्नि से व्यभिचार हो जाएगा, यानी वो जो दृष्टांत देते हैं वो उल्टा सिद्ध होगा, क्योंकि भस्माच्छादित अग्नि में अग्नि रूप द्रव्य का सद्भाव तो पाया जाता है, किंतु उसके धर्म रूप ताप और प्रकाश का सद्भाव नहीं पाया जाता। यानी वो शंकाकार कहता है भस्म से ढकी हुई जो अग्नि है, अग्नि तो है परंतु अग्नि का लक्षण उष्णता और ताप नहीं है, ऐसा उसका कहना है, तो ऐसा तो है ही नहीं है। इस तरह हेतु विपक्ष में चला जाता है, अतएव वह व्यभिचरित हो जाता है। ये इतनी बड़ी वो शंकाकार की शंका है। उसने अग्नि का सद्भाव माना परंतु लक्ष्य को माना परंतु उसका लक्षण का इनकार कर दिया। ख्याल है ना, शंकाकार की भूल कहाँ हुई? अग्नि है माना परंतु अग्नि का लक्षण जो है ताप और प्रकाश उसको नहीं माना। इस प्रकार शंकाकार का भस्म से ढकी हुई अग्नि के साथ व्यभिचार का दोष देना ठीक नहीं है, यानी उसकी ये मान्यता, उसका ये प्रश्न ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि राख से ढकी हुई अग्नि में भी उनके गुणधर्म ताप और प्रकाश की उपलब्धि अनुमानादि प्रमाणों से बराबर सिद्ध होती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि भले यह राख से ढकी हुई है परंतु हाथ में ले लो तो पता चले, और अनुमान भी कर सकते हैं ना, थोड़ी हवा से फूंक दो तो अग्नि प्रज्वलित है, अंदर है ही हुआ। शंका, अब फिर शंकाकार शंका पूछता है, केवल ज्ञानादि पर्याय रूप है इसलिए आवृत अवस्था में उनका सद्भाव नहीं बन सकता है। वो पर्याय की बात उठाई अभी शंकाकार ने, यह शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा केवल ज्ञान के शक्ति रूप से सदा पाए जाने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहते हैं? ज्ञान संतान यानी ज्ञान की पर्याय, हर समय ज्ञान की पर्याय कुछ न कुछ चलती रहती है, तो उस पर्याय की संतान की अपेक्षा वो ज्ञान का कभी अभाव होता ही नहीं है। ज्ञान कहने केवल ज्ञान का कहेंगे, अभी हम ज्ञान गुण को ही केवल ज्ञान कह रहे हैं, ये शक्ति रूप केवल ज्ञान की बात चल रही है। यानी ज्ञान पर्याय हर समय चल रही है तो वो ज्ञान गुण को बताती है ना, तो ज्ञान गुण को यह हम केवल ज्ञान कह रहे हैं, तो कोई भी कितनी भी अल्प पर्याय क्यों नहीं हो वो किसको बता रही है? वो केवल ज्ञान की सामर्थ्य को बता रही है। देखो अल्प ज्ञान तो हमारे अभी हमारे में थोड़ा ज्ञान है ये तो अपने को पता चलता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ चीजें जानते हैं, तो जानने का कार्य यहाँ हो रहा है ये पता है। जो थोड़ा भी जानता है वो क्या सिद्ध करता है? वो ज्ञान गुण है, इतना सिद्ध हुआ। तो ज्ञान गुण किसे कहते हैं कि जो जानता है? ज्ञान गुण की बात करें तो जो जाने उसको ज्ञान कहेंगे। वो ज्ञान क्या क्या जानता है? स्व पर सबको जानता है। कितना जानता है? सब कुछ जानता है, अनंत जानता है। गुण की बात हो रही नहीं? तो जो सब कुछ सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है, अनंत जानता है, अनंत काल पहले का भी जाने, वो सब जो उसमें और पड़ी है ज्ञान गुण में, ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं? हम केवल ज्ञान कहते हैं। तो जो छोटा में छोटा अंश अभी प्रकट है वो किसको बता रहा है? पूरे ज्ञान को बता रहा है। अंश पूरे ज्ञान को बताता है और वो आंशिक रूप से उसकी वो कंटिन्यूसली चल रही है। जो अंश है उसको हम अंश कहेंगे, जब पूर्ण हो जाएंगे तो हम उसको पूर्ण कहेंगे। पूर्ण का नाम हमने दिया केवल ज्ञान, और जो अंश था उसके हमने अलग अलग नाम दिए उसको, मति ज्ञान कहा, शुद्ध ज्ञान कहा, अवधि ज्ञान कहा, मरियम परे ज्ञान कहा। मैं ये अंश किसके है? पूर्ण के है क्या और किसके है? पूर्ण के अंश है, जो केवल ज्ञान जो पूर्ण है उसके ही अंश है। कल मैं देख रही तो वो बीच का चांद दिख रहा था, चंद्रकोर जिसका एकदम फाइन। तो ये पूरा आकार जो है पूर्णिमा का जो पूर्ण होने वाला है उसी का वो अंश दिख रहा है ना? तो जो अंश किसको बता रहा है? पूरे को देख बता रहा है। वैसे अभी हमारी अल्प ज्ञान की जो पर्याय है वो किसको बता रही है? पूरे केवल ज्ञान को बताइए, केवल ज्ञान का अंश है, ख्याल आता नहीं? ये पर्याय रूप केवल ज्ञान अंदर है और ऊपर से ढका हुआ, ऐसी बात है ही नहीं। परंतु जो कुछ अंश है वो केवल ज्ञान का, पूर्ण ज्ञान का ये एक अल्प अंश है।
देखो यहाँ केवल ज्ञान का अंश है ऐसा बार बार बता रहे हैं, वहाँ ऐसा समझना वो ज्ञान गुण जो है, वह ज्ञान गुण जो किसी भी जीव में है वो है तो परिपूर्ण है ना, क्या आधा अधूरा है? और जो परिपूर्ण ज्ञान है उसका ही हमने पर्याय में जब व्यक्त होता है परिपूर्ण ज्ञान, तो पर्याय में उसको केवल ज्ञान कहा है। तो वह जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय है वो कहाँ से पैदा हुई? स्वभाव में से हुई कि कहीं अन्य से हुई? तो स्वभाव ही केवल ज्ञान स्वरूप है, ख्याल में? तब यहाँ जब जब कह रहे हैं कि केवल ज्ञान शक्ति रूप से, तो वो तो स्वभाव की बात चल रही है उसकी। अब वह जो केवल ज्ञान कहो या ज्ञान गुण कहो, तो ज्ञान गुण का अंश अभी हमें दिख रहा है। जैसा अभी आपको आपने बीज का चांद देखा तो आप क्या कहेंगे? ये चंद्रमा है, अरे वो बीज का चंद्रमा है, तो वो केवल ज्ञान नहीं है। मान लो अभी क्या है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है या अवधि ज्ञान है, लेकिन है तो ज्ञान ना। चांद को ही हम देख रहे हैं तो यहाँ तो हम ज्ञान को ही देख रहे हैं। तो ज्ञान कौन सा? कि जो पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान रूपी जो शक्ति है उसका अंश है। बात बैठती है? अब आगे
देखो, ये पढ़ा ना हमने कि कभी नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा। ज्ञान संतान यानी वो कंटिन्यूस ज्ञान का प्रवाह, जानना 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 हर समय चल रहा है, अनादि अनंत ये सब चल रहा है जो जानने का। ये जो संतान की अपेक्षा, केवल ज्ञान के शक्ति रूप से सदा पाए जाने में कोई विरोध नहीं आता। ये केवल ज्ञान की शक्ति तो सदा बनी रहती है, और उस परिपूर्ण ज्ञान जो है अपना स्वभाव जो है ये उसी का अंश है। छद्मस्थ अर्थात अल्प ज्ञानियों के ज्ञान और दर्शन अल्प होने मात्र से अमंगल नहीं हो सकते हैं। क्या कहा? ये हमें अपना ज्ञान बहुत कम है, क्या करें हम, हीन है, दीन है, ऐसी जो विचार चलते हैं, उल्टे विचार चलते हैं, तो कैसा विचार करना है? ये ज्ञान और दर्शन है वो अल्प है, इसलिए हीन नहीं है क्योंकि वो स्वभाव है अपना, अल्प है, अभी अल्प प्रकट है, परंतु स्वभाव परिपूर्ण है, उसका एक अंश वो अभी दिख रहा है। क्योंकि ज्ञान और दर्शन के एक देश में मंगलपने का अभाव होने पर ज्ञान और दर्शन के संपूर्ण अवयवों को भी अमंगलपना प्राप्त होगा। क्या कहना चाहते हैं? यदि अंश अमंगल हो, हम बहुत थोड़ा जानते हैं, अभी हमारी अधूरी पर्याय ना ज्ञान की, बहुत कम जानते हैं, इसलिए अगर उस ज्ञान को अमंगल कहेंगे तो जिसका वो अंश है उसको भी अमंगल कहना पड़ेगा। ये अन्यमति क्या कहते हैं? ईश्वर है हमारा सुखी है और हम सब ईश्वर के अंश है, और हम अंश दुखी है तो वो ईश्वर कितना दुखी होना चाहिए? क्यों? ये तो उनकी कल्पना की बात है। परंतु यहाँ क्या कहते हैं? जो ज्ञान दर्शन प्रकट है वो थोड़ा है, इसलिए उसमें अमंगलपना नहीं हो सकता, क्योंकि वो मंगल रूप जो केवल ज्ञान है उसका अंश है ये। अगर अंश अमंगल हो तो अंशों का अभी परिपूर्ण जब हो जाएगा तो सब अनेक अमंगल मिलके एक पूरा बड़ा अमंगल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। शंका, आवरण से युक्त जीवों के ज्ञान और दर्शन मंगलीभूत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव ही नहीं हो सकते। ये शंकाकार ने क्या उठाया कि अभी जो हमारा आवृत ज्ञान है, अभी जो अल्पज्ञ का ज्ञान है, वो जो मंगल रूप ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उसके ये अवयव ही नहीं है, ऐसा उसने कहा। उसका समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान और दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता है। यानी ये सब ज्ञान और दर्शन गुण की तो पर्याय है, ये जो हम जिसको मतिश्रुता आदि कहते हैं ये ज्ञान गुण की पर्याय। वो ज्ञान गुण कैसा है? परिपूर्ण सामर्थ्य के साथ विद्यमान है हर समय। गुण उसी को कहेंगे जो सभी अवस्थाओं में और सभी प्रदेशों में पाया जाता है ना? तो फिर प्रश्न पूछता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अतिरिक्त मति ज्ञान आदि ज्ञान और चक्षु दर्शन आदि दर्शन तो पाए जाते हैं। फिर प्रश्न क्या कहा? कि हमें तो मालूम है मति श्रुता अवधि मन परी, ये तो केवल ज्ञान से भिन्न ज्ञान पाए जाते हैं, और दर्शन में भी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन पाए जाते हैं। तो आप तो कहते कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न कोई ज्ञान ही नहीं है, तो ये क्या, ये तो चार ज्ञान है वह अन्य, तो इनका अभाव कैसे किया जाता है? तो उसका समाधान क्या, उस ज्ञान और दर्शन संबंधी अवस्थाओं की मति ज्ञानादि और श्रुत ज्ञानादि नाना संज्ञाएं है, उसको नाम दिया है चक्षु दर्शन आदि, सॉरी क्या कहते हैं, ये जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के हमने अंश कहे हैं, उस अंशों का ही नाम हमने क्या दिया है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन परि ज्ञान, और वो दर्शन के अंशों को ये चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन आदि नाम दिए। अर्थात ज्ञान गुण की अवस्था विशेष का नाम मत्यादि यानी मति आदि, और दर्शन गुण की अवस्था विशेष का नाम चक्षु दर्शन आदि है। यथार्थ में यानी सच देखा जाओ तो इन सब अवस्थाओं में रहने वाले ज्ञान और दर्शन एक ही है, ख्याल है ना, ये जो अंश है वो, परंतु अंश किसका है, एक ही का अंश है, ये कोई भिन्न एंटिटी नहीं है, भिन्न चीज नहीं है, ये मति ज्ञान कोई और हो श्रुत ज्ञान कोई और हो ऐसा नहीं है, ये सब अल्प जो ज्ञान के अंश है अलग अलग, उसको हमने नाम देकर पहचानना कैसे ना, है तो परिपूर्ण एक ज्ञान के अंश और वो भी मंगल रूप है, फिर भी उसको पहचानने के लिए हमने अलग अलग नाम दिए हैं, परंतु वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न चीजें नहीं है, उसी के अंश है, ऐसा यहां समझाना है। शंका, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अंकुर रूप छद्मस्थों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना प्राप्त होने पर मिथ्यादृष्टि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव में भी वे अंकुर विद्यमान है, भले कुमति हो, वो भी अभी कुमति कहो या कुछ तो कहो, वो भी क्या है, ज्ञान गुण का ही तो अंश है, तो उसको भी मंगलपना प्राप्त होगा। यदि ऐसा है तो भले ही मिथ्यादृष्टि जीव को ज्ञान और दर्शन रूप से मंगलपना प्राप्त हो, क्या एक शब्द डाला, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से मंगल रूप कहते हो तो बहुत है, ये तो इष्ट ही है, किंतु इतने से ही मिथ्यात्व अविरति आदि को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। पहले हमने बात की थी ना इसकी, उसकी जो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा है, क्योंकि वो केवल ज्ञान का अंश है तो हम उसको मंगल कहेंगे, परंतु उसमें जो मिथ्यात्व अविरति आदि पाए जाते हैं मिथ्या दृष्टि जीव में, वो मंगल बिल्कुल नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना, हाँ देखो क्या कहते हैं, कोई ऐसा प्रश्न उठाएगा कि मिथ्या दृष्टि जीव में भी ज्ञान दर्शन का अंश पाया जाता है तो मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल हो जाएंगे, तो वहां कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान और दर्शन जो है वो मंगल है, यानी ज्ञान दर्शन की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव को भी मंगल कहेंगे हम, परंतु उसके साथ जो मिथ्यात्व है अविरति है अज्ञान जो है उसको मंगल नहीं कहा है, ख्याल आता है ना। अभी हमने बच्चे के उदाहरण प्रकटित किया है, तो अगला प्रश्न भी तो कल ही लेंगे हम, अभी समय हो चुका है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो रो।